हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा हिम्मत और ताकत है अमन, की बात सुनकर तारा उसे अपनी आंखें बड़ी कर करके देखने लगी थी। वो सोचने लगी थी, कहीं से मेरी सच का पता तो नहीं चल गया। लेकिन फिर जैसे ये मैंने ये कहा, तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत ताकत है, इतनी हिम्मत ताकत मैं आज से पहले किसी इंसान में नहीं देखी है। तब जाकर तारा को थोड़ा सा सुकून हुआ था और उसने कहा, फिक्र मत कीजिए, मैं जानती हूँ जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कहकर तारा ने अमन के गालों को हल्के से छुआ था और उन्हें लाइट किस कर दिया था और उसके बाद अपने केबिन में और जाने लगी थी। तभी अमन ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया था और बोला था, अभी तो तुम जा रही हो, पर हाँ, आज हम जल्दी ही घर के लिए चलेंगे, क्योंकि जाने क्यों मेरा दिल नहीं लग रहा है आज ऑफिस में, अमन ने कहा था। तो तारा ने उसे कहा, ठीक है, तो फिर हम फटाफट से शर्मा वाली फाइल आज कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद घर के लिए निकलते हैं। तब अमन ने हाँ में सर हिला दिया था और कहा था, ठीक है, तुम जल्दी से जाकर उसे फाइल का काम कंप्लीट करो, फिर हम लोग निकलते हैं। अमन की बात सुनकर तारा मुस्कुराती हुई अपने केबिन की ओर चल पड़ी थी और जैसे उसने केबिन खोला, उसके ठीक सामने विक्रांत रंधावा खड़ा हुआ था। विक्रांत को देखकर तारा पहले तो हैरान रह गई थी, क्योंकि अचानक से विक्रांत उसके सामने आ गया था, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोली थी, अरे विक्रांत की आप। तब विक्रांत डर गई क्या? तब तारा, नहीं नहीं, वो एक्चुअली एकदम से आप मेरे सामने आ गई ना, तो थोड़ा सा बस इसीलिए, तारा ने ये कहा था। तब विक्रांत, एक्चुअली तुम्हारे पति देव ने मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए लगा रखा है, ताकि कोई कमरे में ना पाए, आप दोनों को कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, तो मैं तो बस अपनी वही ड्यूटी निभा रहा था। विक्रांत ने थोड़ा मजाकिया लहजे में कहा था, वो तारा के साथ दोस्ती करना चाहता था, ताकि वो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके, और तारा जितनी जल्दी उसके साथ कम्फर्टेबल होगी उतना ही उसे आसान होगा तारा और अमन को अलग करने में। विक्रांत ये बात अच्छी तरह से जानता था। फिर विक्रांत बोला था, आई होप आप अब ठीक होंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, विक्रांत ने फिक्रमंद होते हुए कहा था। तारा ने विक्रांत को हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया था, जी विक्रांत जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर तारा अपने केबिन में चली गई थी और पीछे से विक्रांत उसकी खुशबू सूखता हुआ रह गया था। वो बड़ी ही बुरी तरह से उसे स्माइल कर रहा था। उसे वक्त वो बहुत ही ज्यादा गंदा सा लग रहा था, एकदम भद्दा सा। और अचानक से एक बार फिर से उसकी पुतलियां गायब हो गई थीं और आंखों में केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था, बहुत ही काली काली अंधेरा। बिना पुतलियां के आंख आप लोग अज्यूम कर सकते हो कैसी दिखाई दे रही होगी। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था और फिर कुछ सोचते हुए हल्का हल्का मुस्कुराने लगा था। वही मल्लिका ने आज रात को ही विक्रांत रंधावा की जान लेने का फैसला कर लिया था, क्योंकि जब से विक्रांत रंधावा ने उसे बुढ़िया बोला था, उसे बार बार यही लग रहा था कि विक्रांत उसका सच जान चुका है, वरना भला वो उसे बुढ़िया क्यों कहता। और फिर उसने बात बदलने के लिए बुढ़िया शब्द का यूज किया था। ये बात मल्लिका अच्छी तरह से जान चुकी थी। वही काली शक्तियों का मालिक अमित कितनी ही देर से मल्लिका का इंतजार कर रहा था। उसको लग रहा था कि विक्रांत रंधावा को रिझाकर वो जल्दी ही उसके पास आएगी, लेकिन मल्लिका उसके पास नहीं आई थी। वो अपने केबिन में जाकर अपना काम खत्म करने लगी थी, क्योंकि मल्लिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो अपनी प्रॉब्लम अमित के साथ शेयर करती है तो अमित उल्टा उसका ही मजाक उड़ाएगा, क्योंकि अमित भी उसका असली रूप देख चुका था और वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसका असली रूप देखने पर काली शक्तियों के मालिक अमित ने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। लेकिन अब मल्लिका को रह रहकर केवल विक्रांत की कही हुई बातें ही सुनाई दे रही थी। बार बार उसके कानों में विक्रांत की एक एक बात गूंज रही थी। जब काली शक्तियों के मालिक अमित को मल्लिका का इंतजार करते हुए काफी देर हो गई थी, तो वो अपने केबिन से निकलकर मल्लिका के केबिन की ओर जाने लगा था। मल्लिका को एहसास हो गया था कि अमित उसी की ओर आ रहा था, लेकिन उसने फिर भी कोई रिएक्ट नहीं किया था। वो बिल्कुल सपट चेहरा लिए अमित के आने का इंतजार करने लगी थी, लेकिन इससे पहले कि काली शक्तियों का मालिक अमित उसके केबिन तक पहुंच पाता, वो किसी से टकरा गया था। और जैसे ही उसने अपनी आंखें उठाकर देखा, तो उसके सामने कोई और नहीं बल्कि विक्रांत रंधावा था। विक्रांत रंधावा को देखकर अमित को एक बार फिर से उसके अंदर से अजीब सी स्मेल आने लगी थी, क्योंकि जैसे जैसे वो विक्रांत के करीब होता जाता था, उसका दम घुटने लगता था और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती थी, क्योंकि उसे बहुत ही अजीब सी स्मेलों से विक्रांत के अंदर से आया करती थी। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों उसे एक मामूली इंसान में से इतनी बुरी स्मेल आ रही थी। अमित को इस तरह से टकराया हुआ और इस तरह से खुद से दूर जाता हुआ देख काली विक्रांत रंधावा सोच में पड़ गया था, और वो अभी उसका हाथ पकड़कर जाना ही चाहता था कि आखिर क्या है इसके दिलो दिमाग में, लेकिन वो जान नहीं पाया था क्योंकि अमित उसे 2-3 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया था। अमित को इस तरह का बिहेव करता हुआ देखकर विक्रांत चौंक गया था, लेकिन उसने उसे बोला कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था इस वक्त वो ऑफिस में है और ऑफिस में वो किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं ले सकता है। तब उसने हल्का सा हल्की सी मुस्कुराहट अपने फेस पर लाते हुए कहा था, अरे अरे अमित जी, आप इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ है और आप इस तरह से मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं? मैं भाई कोई भूत थोड़े ही ना हूँ। विक्रांत रंधावा ने अपनी ही लैंग्वेज में, जो कि उसकी मजाकिया लैंग्वेज थी, उसमें अमित से कहा था। विक्रांत की बात सुनकर अमित भी हल्का सा मुस्कुराने लगा था और बोला था, वह नहीं विक्रांत जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली आप अमन के बचपन के दोस्त हैं और मैं भी अमन का बचपन का दोस्त हूँ, लेकिन और मैं आज तक कितनी बार आपके बारे में केवल सुना सुना ही था। बस आपसे मुलाकात आज अब जाकर इतने सालों के बाद हुई है, वो पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं किसी काम से मल्लिका जी के कैबिन में जा रहा था लेकिन आपसे टकरा गया, उसके लिए सॉरी। तब विक्रांत ने अमित से कहा था, अरे अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, तो इसमें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम अमन के दोस्त हो तो इसलिए आज से तुम हमारे भी दोस्त हुए, आज से हम दोनों भी अच्छे दोस्त हैं। ऐसा कहकर विक्रांत ने दोस्ताना लहजे में अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। एक्चुअली विक्रांत रंधावा का अमित के सामने हाथ बढ़ाने का केवल एक ही मकसद था, ताकि वो उसके हाथ को छू ले और उसके बारे में जानकारी पता कर ले, क्योंकि उसने उसका मन पढ़ने की कोशिश की थी लेकिन वो उसका मन नहीं पढ़ पाया था। तो तब से ही विक्रांत रंधावा बेचैन हुआ बैठा था कि आखिर में एक मामूली इंसान का मन क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके सामने कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि काली शक्तियों का मालिक अमित था, जिसने कितने ही घोर तपस्या करने के बाद काली शक्तियाँ हासिल की थीं। जैसे ही विक्रांत ने हाथ आगे बढ़ाया और अमित ने उसका हाथ देखा तो कुछ सोचकर उसने भी उसके साथ हाथ मिला लिया था, और जैसे ही उन दोनों के हाथ आपस में मिले एक अजीब सा कंपन उन दोनों के जिस्म में हो गया था। वही विक्रांत रंधावा उसके बारे में जानना चाहता था, लेकिन उसे कुछ भी अमित के बारे में पता नहीं लग पाया था क्योंकि अमित ने अपनी काली शक्तियों के द्वारा अपनी सारी पहचान छुपा कर रखी थी।
वो नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके बारे में पता चले, वही विक्रांत रंधावा। तो ये सोच सोचकर अब उसका दिमाग खराब हो जा रहा था कि ऐसी क्या शक्ति थी कि इसके बारे में मैं नहीं पता लगा पाया। आखिर था कौन ये विक्रांत रंधावा, और अमित को एक फीकी सी मुस्कुराहट देता हुआ अपने केबिन की ओर चला गया था। वही काली शक्तियों का मालिक अमित विक्रांत रंधावा के साथ हाथ मिलाने पर जो कंपन हुआ था उसे महसूस करके कुछ सोचने लगा था, और फिर कुछ कुछ सोचता हुआ मल्लिका के केबिन की ओर चला गया था। जैसे ही काली शक्तियों का मालिक अमित मल्लिका के केबिन में गया, उसने देखा मल्लिका किसी फाइल में कुछ काम कर रही थी। मल्लिका को देखकर अमित का पारा हाई हो चुका था और वो गुस्से से उसकी ओर बढ़ा था और बोला था, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम मेरे पास आने के बजाय इन मामूली सी फाइल में अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैंने विक्रांत रंधावा के पास भेजा था तुम्हें, तो तुमने उसका कोई जवाब दिया मुझे? तुमने बताया कि क्या हुआ था उसके केबिन में? अमित को इतने गुस्से में देखकर मल्लिका हैरान रह गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अमित को उसे वक्त किस तरह से हैंडल करे, क्योंकि एक तो पहले ही वो विक्रांत रंधावा की बात को लेकर परेशान थी, ऊपर से अब अमित उसे सुनाने लगा था। अब मल्लिका को भी बहुत ही गुस्सा आने लगा था और वो बोली थी, सर ये आप क्या कह रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपका ही काम कर रही थी और उसे विक्रांत रंधावा को मैं गई थी रिझाने के लिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, उसने मेरी तरफ इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाई, समझे आप? और मैं आपको क्या बताती जाकर, हाँ आप ही बताइए, क्या बताती मैं आपको आकर? क्या मैं आपको ये बताती कि उसे विक्रांत रंधावा ने मुझे बुढ़िया कहा? क्या मैं आपको ये बताती कि उसे विक्रांत रंधावा ने मेरी बुरी तरह से बेइज्जत करके मुझे अपने केबिन से बाहर निकाल दिया? क्या या 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 या? जैसे ही अमित ने ये सुन उसकी आंखें हैरत के मारे फटी रह गई थी और वो उसे और वो मल्लिका की बातों को रिपीट करने लगा था और बोला था, ये क्या कह रही हो तुम? विक्रांत रंधावा ने तुम्हें अपने कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया और उसने तुम्हें बुढ़िया कहा। तब एक एक करके मल्लिका ने जो भी विक्रांत रंधावा ने उसे कहा था वो सारी बातें अमित को बता दी थी। विक्रांत रंधावा के बारे में सुनने के बाद अमित कुछ सोच में पड़ गया था। धन्यवाद।